नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।